नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में लेंगे भाग। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का लिया फैसला। इनाडू ग्रुप के संस्थापक और मीडिया के जानी मानी हस्ती रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद में निधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया और उन्होंने राष्ट्रपति को सूचित किया है कि वे रविवार शाम को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के प्रति सहज हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन अभी बाकी विवरणों पर काम करेगा और तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और यह 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उनकी सरकार देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। नामित प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ युवाओं के लिए लाभदायक साबित होगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी राज्यों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भाग लेने के लिए नेता राजधानी पहुंचना शुरू हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनोथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी समारोह में भाग लेंगे। ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल आयोजित भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। समारोह के दौरान दिल्ली के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और गर्म हवा के गुब्बारे सहित उप पारंपरिक हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 9 और 10 जून तक लागू रहेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में भाग ले रहे हैं। इधर राष्ट्रपति भवन में होने वाले चेंज ऑफ गार्ड समारोह आज और इस महीने की 15 तथा 22 तारीख को आयोजित नहीं होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह तथा दोनों सदनों के राष्ट्रपति के संबोधन की तैयारियों के कारण लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक दल को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव चिन्ह के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले एक ही चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। इनाडू ग्रुप के संस्थापक और मीडिया की जानी मानी हस्ती रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। श्री राव को तबीयत बिगड़ने के कारण इस महीने की 5 तारीख को नानक रामगुड्डा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह उनका देहांत हो गया। श्री राव पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर रखा गया है, जहां उन्हें परिजनों और प्रशंसक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रामोजी राव इनाडू ग्रुप, मार्गदर्शी, चिटफंड, रामोजी फिल्म सिटी और प्रिया फूड्स सहित अनेक कारोबारों का प्रबंधन करते थे। एक समय में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में इनाडू प्रमुख मीडिया समूह था और राजनीति में वो काफी प्रभावशाली थे। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बैठक में श्री खड़गे ने पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों को चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जहां से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हुई थी वहां की दोनों सीटों पर और नागालैंड, असम, मेघालय में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। श्री खड़गे ने कहा कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लोगों का अपार समर्थन मिला है। उन्होंने यह भी कहा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ संसद के अंदर और बाहर एकजुट होकर कार्य करेगी। इसके अलावा शाम को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी। उड़ीसा में सोमवार को राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। उसी दिन सुबह भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसके बाद भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अभी नए मुख्यमंत्री के नाम का निर्णय लेना और सबकी निगाहें दिल्ली की ओर है, जहां पार्टी के संसदीय बोर्ड में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 78 सदस्यों वाले विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के दो केंद्रीय मंत्री पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में नेता का औपचारिक रूप से चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए अनेक नामों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 6 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम, वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद धर्मेंद्र प्रधान, नवनिर्वाचित विधायक सुरेश पुजारी, मोहन चरण माझी और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी और चुने गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान यह वायदा किया था कि राज्य का मुख्यमंत्री धरती पुत्र होगा। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की है, जबकि बीजू जनता दल को 51, कांग्रेस को 14 और अन्य को 4 सीटें हासिल हुई हैं। देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी IMA की प्रतिष्ठित पासिंग आउट परेड में 355 युवा अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तरी कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार ने सलामी ली। जेंटलमैन कैडेट प्रवीण सिंह को प्रतिष्ठित स्वर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत से 39 और विदेशों से 10 कैडेट सहित कुल 394 जेंटलमैन कैडेट ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। लंदन में चल रही FIH हॉकी प्री लीग में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-0 से हरा दिया था। भारतीय टीम के अब तक के प्रदर्शन पर बोलते हुए उपकप्तान हार्दिक सिंह ने कहा कि उन्होंने हॉकी के अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे मैचों में उनका उद्देश्य जोरदार शुरुआत करना रहेगा। कल भारत का मुकाबला मेजबान ब्रिटेन से होगा और उनका इरादा अपने अभियान को बेहतरीन रूप से समाप्त करना होगा। भारतीय पुरुष टीम को अंक तालिका में 4वां स्थान मिला है। टीम ने 14 मैचों में से 24 अंक प्राप्त किए हैं। अंक तालिका में अर्जेंटीना 29 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स के 26 अंक हैं। ICC क्रिकेट पुरुष T20 विश्व कप में आज सुबह अमेरिका के टेक्सास स्थित ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 124 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए और जीत हासिल कर ली। वहीं एक दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 15 ओवर 2 गेंद में 75 रन पर सिमट गई। कल रात अमेरिका के न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रनों से हरा दिया। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बनाए। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 7 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशेष अतिथि के रूप में लेंगे भाग। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का लिया फैसला। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।